बीबीसी इंडिया बोल तारीख 20 फरवरी दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 10 दिन पहले जेएनयू में कथित रूप से कई देश विरोधी नारे लगाए गए। इसके बाद शुरू हुई राष्ट्रद्रोह बनाम राष्ट्रभक्ति की तीखी बहस। इस बहस को लेकर मीडिया में दरार क्यों? अलग अलग चैनलों के चीखते एंकर कार्यक्रम में एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। एक संपादक दूसरे संपादक को गैर जिम्मेदार बताता है। पत्रकारिता जिम्मेदारी का काम है तो संवाद क्यों नहीं हो रहा? क्या पत्रकारिता के सारे नियम कानून दरकिनार और मर्यादाएं बेमानी हो चुकी हैं? यही है इंडिया बोल का विषय। फोन करें 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर। लेकिन पहले रुकेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुए जाट आंदोलन के बाद वहां कई जिलों में तनाव का माहौल है। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 3 लोग मारे गए हैं और 78 जख्मी हुए हैं। उधर झज्जर शहर में सभी दुकानें बंद हैं और रोहतक हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। सोनीपत में भी जाम के हालात हैं। रास्ते बंद होने की वजह से रोहतक में हेलीकॉप्टर के जरिए फौज को उतारा गया है। भारत का कहना है कि वो नेपाल में शांति और स्थिरता चाहता है और वहां नए संविधान की सफलता आम सहमति और बातचीत पर निर्भर करेगी। 6 दिन की यात्रा पर भारत आए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। दोनों देशों ने 9 सहमतियों पर हस्ताक्षर किए जिसमें परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करना भी शामिल है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का कहना था कि हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जो गलतफहमी हुई है वो अब दूर हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि अगले महीने होने वाली उनकी क्यूबा यात्रा से वाशिंगटन और हवाना के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। अपने साप्ताहिक संबोधन में बराक ओबामा ने कहा कि वे क्यूबा की सरकार से लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर स्पष्ट तौर पर बात करेंगे। बराक ओबामा का कहना था,
We're still in the early days of our new relationship with the Cuban people. This transformation will take time.
क्यूबा के लोगों के साथ अभी हमारे शुरुआती रिश्ते हैं। अभी बदलाव में समय लगेगा। मैं भविष्य को लेकर केंद्रित हूं और मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा से अमेरिका के हितों को बढ़ावा देने, क्यूबा के बेहतर भविष्य और हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकेगा। ये थे बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहने के मुद्दे पर 23 जून को एक जनमत संग्रह करेगा। कैमरन ने यूरोपीय संघ को लेकर अपनी डील के बारे में अपने कैबिनेट मंत्रियों से विचार करने के बाद ये ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने मंत्रियों को बताया कि वो सुधारों के साथ यूरोपीय संघ में रहने की सिफारिश करेंगे। ब्रिटानी गृहमंत्री थेरेसा मे ने कैमरन का समर्थन किया। वहीं न्याय मंत्री माइकल गोव यूरोपीय संघ से बाहर रहने वाले समूह का हिस्सा बन सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। परीक्षा में कुल 15,008 उम्मीदवार सफल रहे। इन सफल उम्मीदवारों की सूची आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। मुख्य परीक्षा 18 से 23 दिसंबर के बीच हुई थी। आयोग के मुताबिक परीक्षा का तीसरा चरण पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू 8 मार्च को आयोजित किया जा सकता है। सर्बिया की सरकार का कहना है कि लीबिया में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर हुए अमरीकी हवाई हमलों में उनके 2 नागरिक मारे गए हैं। सर्बिया का कहना है कि इन 2 नागरिकों को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबराता शहर में पकड़ लिया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, विषय एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप लगे थे कि इस कार्यक्रम के दौरान कई देश विरोधी नारे लगे, जिसके बाद छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार किया गया। सभी न्यूज चैनलों ने वो वीडियो चलाए जिसमें कथित तौर पर वो नारे लगाए गए थे। इसी वीडियो के आधार पर कई चैनलों ने कन्हैया को दोषी करार देते हुए देशद्रोही बताया। न सिर्फ कन्हैया बल्कि एक और छात्र उमर खालिद पर भी देशद्रोह के आरोप मढ़ दिए। क्या कुछ चला मीडिया में, चैनलों में, उसे सुनते हैं पहले।
उमर, रिमेंबर दिस, यू यू I'm talking about you. I'm talking about you. And I'm talking about Lenin. And I'm talking about Ishan. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. I wonder who is funding you. Omar, stop. Omar, stop. And now you will have to stop and hear me, otherwise I'm going to cut your audio off if you don't stop. The point is simply this. The point is this. Someone's going to call your bluff, and we are calling your bluff tonight. Someone's going to name you as anti-national, and I'm naming you as anti-national tonight.
आतंकियों के समर्थन में नारे लगाना, और वो भी उन आतंकियों के समर्थन में जिन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर फांसी पर लटकाया जा चुका है। क्या देशद्रोह नहीं है? देश की राजधानी में मजमा लगाकर पाकिस्तान के नारे लगाना और कश्मीर को भारत से अलग करने की बेशर्म पैरवी करना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर ने प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें अफजल गुरु का महिमा वंदन किया गया, और ये सब कुछ हुआ बोलने की आजादी के नाम पर, जिसका हक संविधान ने हर नागरिक को दिया है। लेकिन क्या ये इसका बीजा इस्तेमाल नहीं?
उमर खालिद, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं। सर, मैं इस देश का टैक्स पेयर हूं। आप मेरी जेब से पैसा लेकर सब्सिडी पाके वहां पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो मैं आपकी फीस के पैसे और आपके खाने के पैसे इसलिए देता हूं ताकि आप पढ़े और देश को अच्छी सोच देने वाले एक एकेडमिशियन बन के निकले, ना कि सड़कों पर चौराहों पर नारे लगाने वाले इस तरीके के व्यक्ति बनकर निकले जैसे कल वहां दिख रहे।
किसी चैनल का कोई नाम नहीं, सिर्फ ये चंद आवाज़ें थी जो कि आपने सुनी, और ये वो आवाज़ें थी, सच्ची आवाज़ें, जो कि इस टीवी कार्यक्रमों के दौरान तमाम चैनलों पर आपको सुनाई दी और आपने देखी। कई लोगों ने कहा कि वीडियो जो थे वो जाली थे, फर्जी थे, उसमें छेड़छाड़ किया गया था। टीवी चैनलों ने जवाब दिया कि जो छेड़छाड़ी के आरोप लगा रहे हैं वो साबित करें। बहुत कुछ खिलाफ बोल रहे थे, कुछ पक्ष में बोल रहे थे। और कल एक और कमाल हुआ, NDTV ने एक अपना प्राइम टाइम जो कार्यक्रम होता है उसमें ब्लैकआउट कर दिया। रवीश कुमार मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवीश, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपने कल एक बेहद शानदार कार्यक्रम भी किया। रवीश, ये पत्रकारिता का काम पक्षकार बनना है या फिर हम पत्रकार पहले हैं या पक्षकार?
देखिए, जब से ये डिबेट टेलीविजन आया है पत्रकार पक्षकार हो गए हैं, और कई बार मुद्दे आपके ऐसे होते हैं जो दर्शकों की नज़र में आप पक्षकार ही लगते हैं, कई बार आप पक्षकार हो भी जाते हैं। तो इससे हुआ ये है कि हमारा काम जो पहले होता था कि हम हर तरह के तथ्यों को सामने लाकर रख देते थे, और कोई दूसरा होता था जो अखबारों में या कहीं पर आकर अपनी टिप्पणी देता था, तो उससे पता चलता था कि हाँ, एक अमुक व्यक्ति का इस पर इस तरह से सोचना है, तो जनता को सोचने में मदद मिलती थी, उससे नाइत्तेफाकी रखने में मदद मिलती थी। लेकिन अब ये काम कॉलमनिस्ट का काम पत्रकार खुद ही करने लगे हैं, तुरंत राय देते हैं, सूचना से पहले राय देते हैं। जो आवाजें आपने सुनाई हैं वो भयावह हैं, मतलब यू करके बातें की जा रही हैं, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है और उसे आतंकवादी कह दिया गया।
भाई, आप नेशनल टेलीविजन पर कैसे या रेडियो पर कैसे एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई अभी मुकदमा नहीं हुआ, आप कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति देशद्रोही है या ये है जिसके पीछे की कोई पड़ताल नहीं?
मोहन जी, ये गलतियां तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। कभी मीडिया ट्रायल पिछले 4 साल में इतना हुआ है जो बेहिसाब है। लेकिन कई बार होता है जब लगता है कि आप सीमा पार कर जा रहे हैं, सीमा से भी सीमा पार कर जा रहे हैं, और इसलिए इस घटना में ऐसा ही हुआ है कि आप किसी को पता नहीं, तथ्य है, आप अलग अलग चीजें रखिए, नारों पर बहस कर लीजिए, तमाम तरह की परिस्थितियों को रख लीजिए। जिस तरह से अफजल गुरु के बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम लेना या उसकी तारीफ करना अगर देशद्रोह है, तो अफजल गुरु की तारीफ करने वाले या उसे शहीद मानने वालों से मिलकर सरकार बनाना क्या है? ये कैसे हो सकता है कि उनसे आप मिलकर सरकार बनाए तो वो देशभक्ति, और वो उनके अलावा कोई दूसरा कहे कि वो शहीद है तो आप वो उसको गद्दार कहते हैं? महबूबा मुफ्ती उसको शहीद कहती हैं तो आप उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं?
ये तो
आप महबूबा मुफ्ती को गद्दार नहीं कहते?
रवीश, ये अपने अपने तर्क हैं, इन तर्कों पर हम आएंगे कार्यक्रम में। एक चूंकि कार्यक्रम हमारा श्रोताओं का कार्यक्रम है, उनकी आवाजें हम सुनते हैं। जी, नाम बताइए और बंदूक कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपनी राय रखिए।
हेलो
जी, हाँ, नाम बताइए।
हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है और मैं एक पत्रकारिता का ही छात्र हूँ और पत्रकारिता ही सीख रहा हूँ
जी।
सबसे पहले तो मैं, आपने कहा कि बिना किसी तहकीकात के कैसे किसी को आतंकवादी कह दिया जाता है, मैं आपके ही संस्थान द्वारा कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। आप गौर कीजिएगा, आपने एक दिन हेड अपने ट्विटर पर एक खबर पोस्ट की, कुन्नूर में राजनीतिक हत्या रोकने के लिए आरएसएस प्रमुख करेंगे सीपीएम से बातचीत। इसका इसका संदेश क्या था? इसका संदेश था कि सारी राजनीतिक हत्या क्या आरएसएस कराता है? आम व्यक्ति यही सोचेगा। आज आपने हेडलाइंस लगाई कि छत्तीसगढ़ से महिला पत्रकार और वकील कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर महिला पत्रकार और वकील। इसको सुनते हुए कोई क्या कहेगा? पूरे छत्तीसगढ़ से महिला पत्रकार और पूरी की एक जमात पूरा छत्तीसगढ़ छोड़ना चाहती
है। मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, जहां तक बीबीसी के संपादकीय मानदंडों का सवाल है, हम तो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम तो चरमपंथी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और एक 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 खबर जो हम लिखते हैं, जो एक एक खबर लिखते हैं, उसमें तथ्यों की पड़ताल करते हैं, संपादकीय दृष्टिकोण से उसको परखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बाकी चैनल शायद नहीं करते हैं, हम दोनों पक्षों को, यानी कि संतुलन, खबर का संतुलन हम बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है। जी
जी, अब मैं रवि साहब की बात पे आता हूँ।
जी
रवि जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस बहस के दौरान पत्रकारों पर हमला इतना बड़ा मुद्दा था कि जो आप इमरजेंसी के दौर में ले गए, क्या ये आप इमरजेंसी के इंडियन एक्सप्रेस बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब सेंसरशिप होती थी तो उन्होंने उसके विरोध करने के लिए पूरा इतना सफेद छोड़ दिया था, एडिटोरियल कुछ लिखा ही नहीं।
रवीश कुमार जी, आपको सुन रहे हैं रवीश जी,
क्या आप पूरी बहस को आप मोड़ रहे हैं? मतलब जो बहस का मूल मुद्दा, मैं मानता हूँ पत्रकारों पर हमला गलत हुआ है और जिस टीवी चैनल ने वो क्लिप चलाई है उसको निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, वो भाषा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपने कल का जो प्राइम टाइम किया उससे लगता है पूरी बहस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
जी, बंधु, ये टीवी का प्रोग्राम नहीं है। मैं पहले ही बता दूं हम अपने श्रोताओं को, ये टीवी का प्रोग्राम नहीं है। हम यहाँ चीखने चिल्लाने की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो में बहुत सारी आवाजें एक साथ जब आती है ना, तो हम कुछ नहीं सुन पाते हैं। टीवी में तो आपको दिखाई देता है। रवीश जी ने आपको सुना, रवीश जी जवाब देंगे।
एक तो जो उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख राजनीतिक हत्याओं को रोकने के लिए किसी पार्टी से बात करेंगे, इस खबर में क्या गलत है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ये तो अच्छी बात है कि वो बात करेंगे राजनीतिक हत्याओं को रोकने के लिए, इसका मतलब जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उसके वो चर्चा का एक जरिया भी बन सकता है कि आरएसएस प्रमुख इसे गंभीरता से ले रहे हैं। और ये तो अच्छी पहल है कि कोई जा रहा है, अगर राजनीतिक हत्याएं हो रहा है तो क्या उसे रोकने के लिए संवाद की प्रक्रिया स्थापित की जा सकती है। मुझे लगता है कि जो नवोदित पत्रकार हैं उनको इसमें कैसे गलती नजर आई मुझे समझ में नहीं आया। पत्रकारों पर जो हमला हुआ, अगर उन्हें सामान्य लगता है तो मुझे लगता है उन्हें ठीक से पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए। कोर्ट के भीतर हमला हुआ है, इस तरह की धमकियां हमें रोज मिलती रहती हैं, रोज गालियां मिलती रहती हैं, लेकिन अदालत के भीतर भीड़ पहुंच जाए और पत्रकारों का फोन छीनने लगे, उन्हें गालियां दे और निकाल दे, तो ये बड़ा मामला है। और दूसरे दिन भी वकील जब घेर लें कोर्ट को तो ये और बड़ा मामला है। तो इसलिए चर्चा का माध्यम है, क्योंकि इस मुद्दे पे पिछले 8 या 10 दिन से मैथानी इस देश में चर्चा हो रही थी, इसीलिए उसकी एक कड़ी बनती है और इस पर चर्चा होना चाहिए, होनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जो मैंने किया वो बहस मोड़ने के लिए नहीं किया, बल्कि आपको उन्हीं आवाजों को दोबारा सुनाने के लिए किया जो जिनको लेकर आपने बहस की है, कि एक बार जरा ठहर के सुनिए कि क्या हम बिल्कुल सही हैं, क्या हम बिल्कुल दावा कर सकते हैं या कहीं गलत भी हो सकते हैं।
रवीश, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। चंदन नेगी है जिन्होंने की फेसबुक पर एक आप ही के कार्यक्रम को लेकर एक टिप्पणी की है। आपने देखा नहीं, स्क्रीन ब्लैक करके इतिहास बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट बाज लोग हैं भाई, ये आपके लिए इशारा है, ये नया कॉन्सेप्ट आपने दे दिया।
ये ठीक है, कोई कार्यक्रम किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। और कॉन्सेप्ट बाज की बात नहीं है इसमें, और उन्हें अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि किसी से गुस्सा के बात करना, उन्हें ये बात अगर ये ठीक लगती है कि उनके पिताजी किसी की माँ पे, जैसे घरों में होता है कि पिता माँ पे चिल्ला रहा है, चीख रहा है, भाई बहन पे चीख रहा है, उसी तरह से एंकर किसी पे चीख रहा है, तो क्या ये ठीक बातें हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट बाज़ क्या है? तो एंकर की ही बात नहीं थी उसमें, लोग जिस तरह से गोली मार देने की बात कर रहे थे, उन आवाजों को मैं दोबारा लेकर जा रहा था कि आप सुन लीजिए। और मुझे तो लगता है कि ऐसा करना चाहिए मोहनलाल जी, जब भी लगे कि हम बहुत सही हैं या हम ही सही हैं, तो एक बार रुक के ठहर के समझ लेना चाहिए क्या था। उन्हें तकलीफ हुई है इसलिए उन्होंने कहा है कि कॉन्सेप्ट बात।
जी जी, ये टिप्पणी आपके लिए थी। एक श्रोता को कार्यक्रम में दोबारा शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो हेलो
हेलो
जी, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं बंधु?
जिला बाड़मेर, तहसील गुड़ामालानी, गांव बेलडा का बना, राम जी गोल से हरीश बैर बात कर रहा हूं सर। मोहनलाल जी, आपका और सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं।
जी राम जी, अपनी बात रखिए।
जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो गद्दार कहता है वो गद्दार नहीं होता। जो अभी इसको लेकर ये मुद्दे उठ रहे वो मैं सरासर गलत मानता हूं।
ये मुद्दे गलत आप मानते हैं?
जी
बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पर एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी,
हाँ जी नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूं।
जी आपकी आवाज़ बहुत परिचित है इस कार्यक्रम के लिए, जी अपनी राय रखें।
सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, गैरों पे करम अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म न कर। और ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन जो पत्रकारिता के अंदर हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, मेरी समझ में इसका एक सीधा सा कारण है कि हमने विदेशियों को न्यूज चैनल के अंदर परसेंटेज दे दी कि 40% 30% आपका भी हिस्सा रहेगा। अरे भैया, हमारे देश में क्या कमी थी जो इन बेईमानों को ला करके यहाँ रख दिया और हमारे ही टोपी उछाने में लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो देशद्रोही है उसके लिए आतंकवादी से भी बड़ी सजा होनी चाहिए।
जी थोड़ा सा विषय बदल गया श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं वापस विषय पर आता हूँ। रवीश, एक संपादक दूर से दूसरे संपादक को गैर जिम्मेदाराना कैसे बता सकता है? भाई संपादकीय मानदंड तो सबके लिए एक हैं। हम इस बात की पढ़ाई करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं और बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम लोग हर मानदंड पर खबरों को परखते हैं और उसके बाद ही चीज़ें आती हैं।
देखिए मोहनलाल जी, जो आप काम करते हैं बीबीसी में, बहुत प्रक्रियाओं से आप लोग गुजरते हैं। न्यूज चैनल जिस तरह से डिबेट टेलीविजन है, उसमें मानदंड क्या है? अगर चार लोग आते हैं, अगर आप मानदंड को संभालना भी चाहें तो उस हल्ला हंगामे में वो दंड लेके कौन कहाँ भाग जाता है पता नहीं चलता है।
लेकिन चीखते
तो होता ये है कि वो जो हम चीख रहे हैं, कई बार हम उसे सामान्य रूप से लेने लगते हैं, लेकिन जब उस चीख से कोई भीड़ बने तो एक बार दरवाजा खटखटा कर कहना चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है, क्या आप सही कर रहे हैं। अगर आपको तब भी लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो आपकी आजादी है, आप जरूर कीजिए, लेकिन किसी को आतंकवादी, किसी को देशद्रोही सबूत हो जाए, साबित हो जाए तो क्या दिक्कत है? वो तो कानून है, फिर कानून अपने आप से तरीके से निपट लेगा। आप उसके बाद बहस कर सकते हैं कि ये साबित हुआ, लेकिन अभी तक तो सब कुछ संदेह की स्थिति में है। वो वीडियो जिसे कुछ चैनल सही बता रहे हैं और कुछ चैनल फर्जी बता रहे हैं, इसका मतलब वो वीडियो संदिग्ध हो गया, तो उसके सत्यापित होने तक तो हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए ना।
जी बिल्कुल। कार्यक्रम में एक श्रोता को और शामिल कर रहा हूं यहां पर। बंधु नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी राय रखें।
ये दिग्विजय सिंह बोल रहा हूं।
जी कहां से?
खाजूवाला जिला बीकानेर से।
बीकानेर से जी, राय रखें।
जी मेरी राय ये है, जो टीवी चैनल वाले जो बहस करते हैं उसमें शोर शराबा होता और कुछ नहीं होता, ना किसी मान मुद्दे पर निष्कर्ष निकलता सर।
यानी कि निकलता कुछ नहीं है, सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं।
शोर होता है। कोई फायदा नहीं है।
जी जी भाई, जिम्मेदारी का काम है पत्रकारिता, तो भाई आप लोग सब बड़े एंकर हैं और कल आप ही कह रहे थे 1 से 10 की जो रैंकिंग है, तमाम टीआरपी का घालमेल है, तो जिम्मेदारी का काम संवाद क्यों नहीं करते आप लोग? तो भाई भड़काने में लगे
ज्यादातर तो ये हो गया है। और जो
प्राइम टाइम का मतलब ये है कि आठ बड़े चेहरे, बड़े पत्रकार या अलग अलग प्रवक्ता बैठे होंगे और उसमें से बोलने का टाइम सबके पास 30 या 1 मिनट से ज्यादा नहीं होता है।
बिल्कुल, वो WWF के मैच की तरह हो गया है। कई बार तो वो 12-12 लोग होते हैं, एक आदमी एक वाक्य पूरा नहीं करता, जैसे अभी यहाँ हो गया। पर मैं बहुत खुश हूँ मोहनलाल जी, और आश्वस्त हूँ कि श्रोता इस तरह से पकड़ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा सवाल था इस बारे में और यही हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जनमत की मौत है, जो डिबेट टीवी है, टीवी है, और जिस टीवी को टीवी हो गया है, कम से कम दो लोग हो, बात करें, चर्चा हो, एक दूसरे को अपनी बात कहने का मौका मिले, उसमें टोका टोकी हो जाए उतना चलता है, ठीक है, थोड़ी सी गर्माहट हो जाए वो भी चलता है, लेकिन बात ही पूरी ना हो और हंगामा हो, कोई निष्कर्ष ना निकले तो फिर क्या फायदा है? अगर हम बोल रहे हैं कि आज आपने ये काम क्यों किया, और इसका जवाब यह है कि पहले उनसे पूछिए कि उन्होंने यही काम 1964 में क्यों किया। तो इस तरह की दलीलें, बेतुकी दलीलों को ज्यादा जगह मिल रही है, तो उस श्रोता की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। मैं रोक नहीं सकता हूँ, मैं अपने कार्यक्रम में प्रयास करता हूँ, कई बार फेल हो जाता हूँ और ज्यादातर बार पास भी हो जाता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे कार्यक्रम की कोई रेटिंग नहीं आती है, कोई देखता नहीं है।
लवली 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 पिंक हैं, जो कि अपना एक उन्होंने फेसबुक पर एक मैसेज लिया है, प्रवक्ता ही प्रवक्ता गाली देते हैं, मार देने की बात करते हैं, गोली मार देने की बात करते हैं, और एंकर रोज भाषण झाड़ते हैं कि लगता है कि वो ही जो है वो देशभक्ति के प्रवक्ता हो गए, हर बात को देशभक्ति और गद्दारी के चश्मे से देखा जा रहा है।
एक तो लवलिंग को बधाई कि सही तरीके से मेरे हिसाब से उनका सोचना है और इन चीजों को पकड़ रहे हैं, ये बात सही है। मोहनलाल जी, हम सबको यही तो सिखाया जाता है कि कोई भड़काने वाली बात करे, कोई उकसाने वाली बात करे या कोई गुस्से में बात करे, जैसे गोली मार देना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 2-3 साल पहले के टेलीविजन में इसकी जगह मिल सकती है, लेकिन अब बहुत आसानी से कहा जाने लगा है, लोग कहने देते हैं। पहले ये था कि हमें इनको नहीं दिखाना है, तो यही मानदंड और नियम पैमाने टूट गए हैं।
अब कहा जाता है कि यही दिखाना है।
हाँ, ऐसे दर्शक और श्रोता जो आपके कार्यक्रम में है, उनकी संख्या अगर बढ़ती चली जाए तो जवाबदेही का थोड़ा विस्तार होगा, क्योंकि ये सारा कुकर्म टेलीविजन में जो हो रहा है वो दर्शकों के नाम पर हो रहा है, और ये कहा जाता है कि दर्शक को समझदारी से मतलब नहीं है, चेचे चेचे से मतलब है, और जो रेटिंग आती है वो चेचे चेचे वाले प्रोग्राम की आती है, जैसे मेरे कार्यक्रम की कोई रेटिंग नहीं आती है, तो सफलता में बाजार में वही पैमाना बन जाता है, क्योंकि वो नंबर 1, 2, 3 है, हम कौन होते बोलने वाले, हम तो 11वें 12वें नंबर पर है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं जब दूसरे चैनल का प्रोमो देखता हूँ तो 1 से 8 में भी अपना नाम नहीं देता हूं। जरूर मैं 10वें पर होगा या 11वें 12वें।
चलिए, ये तो पायदान की बात हो गई, श्रोता को शामिल कर लेते हैं। जी बंधु, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं। हेलो जी, नाम बताएं।
मैं महेश यादव बोल रहा हूँ, अरुणाचल तेजू से।
अच्छा, महेश यादव अरुणाचल प्रदेश से बोल रहे हैं आप।
जी मैं सुन रहा हूँ।
जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप?
कहना यही चाहते हैं कि देखिए, देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं रह गया है। और एक बात है कि जैसे आपके अतिथि आए हैं, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाया, तो बीजेपी ने उनसे मिलकर सरकार बनाया, कानून अफजल गुरु को फांसी दी, तो कानून में जिसको विश्वास नहीं वो अफजल गुरु को महिमा मंडित कर रहा है। जिसको कानून में विश्वास है, इसका मतलब कि देश के कानून में, संविधान में विश्वास नहीं है क्या किसी?
जी जी जी,
जब विश्वास नहीं है, पत्रकार साहब ने कहा कि नहीं बीजेपी ने मिलकर के बीजेपी से सरकार बनाई, इसका मतलब ये पत्रकार है, इनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए
भाई। ये तो तथ्य है ना, ये तो तथ्य है, ये तो तथ्य है।
तथ्य है तो तथ्य का मतलब ले गए, सीधा बीजेपी पर ले गए, जबकि सरकार बीजेपी और सरकार में अंतर है।
नहीं तो सरकार तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर बनाई ना।
एक दिन और, आप बीबीसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया, मैं इसलिए कहता हूँ, लोग गोडसे को और अफजल गुरु को एक में जोड़ रहे थे, अफजल गुरु ने देश के संविधान माने भारत पर हमला किया, गोडसे ने केवल गांधी को मारा था, देश को नहीं मारा था। गांधी और अरे गांधी का और देश का संसद पर हमला एक नहीं हो सकता है ना।
जी जी जी,
पूरे देश पर हमला था ना।
जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, एक और, क्योंकि ये अगली दूसरी बड़ी बहस है, इस पर हम अभी कार्यक्रम को उस बहस में नहीं ले जाना चाहते, इसलिए एक श्रोता को और शामिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
हेलो
जी, नाम बताएं। Hello? नाम बताएं।
जी मैं संजीव यादव, बिहार अररिया जिला से प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर बोल रहा हूँ।
अच्छा संजीव यादव, आप रिपोर्टर हैं प्रिंट मीडिया के। जी
ये टीवी की बात जो हो रही है और अभी जो प्रकार के साथ घटना हो रही, दुर्भावनापूर्ण घटना है, इसलिए इस घटना के अपेक्ष में आके ये लोग बट गए हैं, ठीक ना, और देशद्रोह कन्हैया से हुआ। घटना के कई दिनों के बाद जो है ये रोष जो है सड़क पे आई और बिना किसी जांच के देशद्रोह का आरोप लगा देना, ये न्याय प्रिय नहीं दिख रहा है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता,
बिल्कुल यही बात रवीश भी कह रहे थे और यही बात हम लोग भी मानते हैं कि जब तक किसी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, अभियुक्त नहीं हो जाता, जब तक सजा सुना नहीं दी जाती, तब तक तो वो एक नागरिक है और उस नागरिक की हैसियत से उनको काम करने का या अपनी बात रखने का अधिकार है। ये सवाल आज़ादी की अभिव्यक्ति का भी है। एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं, उसके बाद रवीश के पास जाएंगे। जी नाम बताएं।
नमस्कार सर जी, मैं ओम प्रकाश गोदरा बोल रहा हूँ, गांव नकोदेसर जिला बीकानेर से।
बीकानेर से बोल रहे हैं ओम प्रकाश जी। जी अपनी बात रखें।
सर मेरा मानना है कि मीडिया को काम होता है सही को सही और गलत को गलत कहना, लेकिन आजकल ऐसा माहौल बन रहा है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ कांग्रेस के चैनल कह सकता हूँ, एक तरफ बीजेपी के चैनल कह सकता हूँ, और निर्णायक स्थिति बनी पूछते अपनी तरफ से मीडिया ट्रायल करते हैं और किसी को देशद्रोही साबित कर देते हैं, किसी को मतलब देश हित से साबित कर देते हैं। मीडिया धर्म तो रहा ही नहीं, निष्पक्षता कहीं रही नहीं और एक तरफा समाचार प्रस्तुत करते हैं सर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पते की बात कही रवीश इन्होंने।
बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि ज्यादातर सवाल आलोचनात्मक तरीके से हमारे दर्शक और आपके श्रोता सोच रहे हैं। ये बड़ी बात है मोहन लाल जी की, वो ये देख रहे हैं और उनकी बात जो अररिया से अभी यादव जी ने सवाल किया है वो गलत तो नहीं है। बंटवारा हो गया है मीडिया में भी, रिपोर्टरों में भी बंटवारा हो गया है। एक बड़ा ही अजीब सा दौर है कि जहां मीडिया मीडिया नहीं रहा उसके भीतर, पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, लेकिन जब जागो तब सवेरा, जब उस समस्या पर बात हो।
लेकिन पत्रकार भी तो देखिए रवीश, पत्रकार भी तो भाई इंसान है, उसकी भी तो अपनी वैचारिक विचारधारा होती है।
उसकी वैचारिक विचारधारा हो सकती है मगर पत्रकार होते हुए वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकता।
कम से कम आप निष्पक्षता तो दिखाएं। जी
हाँ, मतदाता होता है वो किसी पार्टी को वोट करता है तो उस वो उसकी प्रक्रिया तक उसकी एक वैचारिक विचारधारा से वो सहमत होता है। तो इसका मतलब नहीं कि मतदाता ने उसे कुछ भी करने की छूट दे दी है। मतदाता हमेशा उसे आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहता है।
जी।
तो ये वो वैचारिक प्रतिबद्धता रखना उस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से रख सकता है, रखते हैं लोग, लेकिन उस पार्टी के लिए काम करना, दोनों में बड़ा अंतर है। उसके एजेंडे को चलाना फैलाना दोनों में बड़ा अंतर है।
जी एक आखिरी श्रोता को शामिल कर लेता हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
जी मैं संदीप बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
हाँ संदीप, गोपाल जंगन से बोल रहे हैं, अपनी राय रखें।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया ने कई बार उन चीजों को भी हाईलाइट किया जो शायद नहीं थे, जिससे जनता का और भी भरोसा उससे उठता हुआ, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले ये चीजें नहीं थी। क्योंकि मैंने कुछ पिछले महीनों में जिस तरह से असहिष्णुता पे बहस देखी, शायद वो सोसाइटी में जमीन पे वो चीज नहीं थी और मीडिया ने उसे इतना उछाला कि लोगों के अंदर एक गुस्सा आ रहा था कि जो चीज है नहीं उसको भी आप इतना हाईलाइटेड क्यों कर रहे हो।
प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो रवीश जी? ये भाई बहुत मुद्दे की बात है।
प्रोपेगेंडा नहीं, उन्होंने कहा इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसका सवाल दो तरह से दिया जा सकता है। नहीं, उस वक्त मैं ऐसा नहीं मानता कि इस तरह की बात नहीं थी। कलबुर्गी की हत्या हुई थी और दादरी में जो कांड हुआ था वो एक भयावह कांड था, इसलिए उसकी चर्चा हुई। लेकिन इनकी बात एक दूसरे संदर्भ में ठीक भी है कि हमें हर चीज को दिखाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि कहीं उससे हकीकत रियलिटी विकृत तो नहीं होती है। उसकी जो तस्वीर है कहीं यही नहीं लगे कि यही देश है और यही ये सारा चीज हो रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि देश में और भी चीजें हो रही हैं।
रवीश कार्यक्रम के हम
समझना है कि डिबेट टीवी के कारण जो देश में और भी चीजें हो रही हैं अच्छी या बुरी, वो नहीं दिखती।
आखिरी टिप्पणी बात नहीं होती, आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूँ। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम सभी जितने भी चैनल हैं अखबार हैं वक्त की नजाकत को देखते हुए एक आचार संहिता पर सहमत हों, पालन करें, माहौल शांतिपूर्ण पूर्वक बनाए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से संपादकों की बैठक करें?
तो बनाई ही गई,
लेकिन पालन कहाँ होता है?
हाँ पालन क्या होता है? पालन कुछ भी नहीं होता है। वो एनबीए बना है, लोग शिकायतें करते हैं वहां से, उनका सवाल जवाब आता भी है, कई बार वो सख्ती भी।
क्या इस घटना के बाद अब ये सही वक्त नहीं है कि इस पर बड़े बड़े जो संपादक हैं अलग अलग प्रतिष्ठानों के एक साथ बैठें और बात करें इस पे?
मुझे लगता है कि इस घटना के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा सही वक्त हमने कई देखे। अब यही मीडिया का चरित्र हो गया है, अब आपको इसी के साथ जीना मरना है। तभी मैंने कार्यक्रम,
आप बहुत निराशावादी बातें कर रहे हैं, आप बहुत निराशावादी बात कर रहे हैं।
मैं निराशावादी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो संस्थानों में इतनी जल्दी बदलाव नहीं आने वाला है। इस बदलाव को शुरुआत दो तरह से होगा। जो लोग 600-700 रुपए अपने महीने का खर्च करते हैं वो तय करेंगे। अगर वो तय करते हैं तो बदलाव जल्दी आएगा, वरना धीरे धीरे ऐसी ऐसी इस तरह की बहसों से आता है कि अंत में हम अपनी विश्वसनीयता को लेकर ही बाजार में जाते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, वक्त बिल्कुल नहीं है। जी इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुए जाट आंदोलन के बाद वहां कई जिलों में तनाव का माहौल है। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 3 लोग मारे गए हैं और 78 जख्मी हुए हैं। भारत का कहना है कि वो नेपाल में शांति और स्थिरता चाहता है और वहां नए संविधान की सफलता आम सहमति और बातचीत पर निर्भर करेगी। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि अगले महीने होने वाली उनकी क्यूबा यात्रा से वॉशिंगटन और हवाना के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहने के मुद्दे पर 23 जून को एक जनमत संग्रह करेगा। बीबीसी समाचार।
तो आज के बीबीसी इंडिया बोल में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम यानी घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।